शांति। आदरणीय रामनाथ भाई जी, हम सबके मध्य क्लास के लिए उपस्थित हैं। एक हाथ की ताली से हम स्वागत करते हैं। रामनाथ भाई जी वरिष्ठ भ्राता हैं, रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं आप, और जितने भी रिलीजियस विंग के यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या देश में भी अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती है, काफी आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आप 1972 में विद्यालय के संपर्क में आए, आपने अपनी पढ़ाई पूरी की बॉम्बे में, एक रिफाइनरी में आपको मैनेजर की पोस्ट मिली, लेकिन 78 में जब अव्यक्त बाप दादा से आप मिले तब इतनी गहरी छाप पड़ी आप पर कि आपने अपना जीवन उसके बाद से ही हेडक्वार्टर में सेवाओं में समर्पित कर दिया। आप टोली डिपार्टमेंट में थे, मुझे याद है जब हम मधुबन में आए तब आप टोली डिपार्टमेंट संभालते थे और बहुत प्यार से वो टोली डिपार्टमेंट की सेवा आप करते रहे हैं, और उसके बाद में फिर आप रिलीजियस विंग में अधिक एक्टिव हो गए। विदेशों में भी मैं समझती हूँ काफी देशों में आपका जाना हुआ है और अपने ज्ञान युक्त अनुभवों से आपने सबको लाभान्वित किया है। आप बाबा में बहुत निश्चय बुद्धि, लगनशील और कर्मठ हैं। अपने जीवन से अनेक आत्माओं को आप प्रेरणा देते रहते हैं। तो अभी हम सुनेंगे स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, इस विषय पर। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बाबा कहता है अगर स्वस्थिति मजबूत है तो फिर परिस्थिति हम पर हावी नहीं होती है, हम सहज ही उसको पार कर पाते हैं। तो कैसे कर पाएंगे वो पूरी विधि अभी हम समझेंगे। आदरणीय रामनाथ भाई जी, आपकी दिनचर्या भी अभी सुना देते हैं, कल की दिनचर्या। कल आपका स्वमान रहेगा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नोट कर ले भले, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सुबह 9 से 9:30 बाबा को शिक्षक के संबंध से पत्र लिखेंगे।
ओम शांति। टॉपिक सुदम, स्वस्थिति से परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। स्वस्थिति क्या, स्व कौन है? आत्मा। आत्मा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्मा की स्थिति एक है नॉलेजफुल, हर प्रकार का ज्ञान चाहिए, नॉलेजफुल का उसको। फिर नॉलेज के साथ ज्ञान है, शक्ति भी चाहिए, पावर भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान है तो काम नहीं करेगा, पावर भी चाहिए। नॉलेजफुल और पावरफुल है तो उसकी स्थिति को कहते स्वयं की स्थिति, उसको बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। तो शक्तियां भी चाहिए, ये अगर दोनों है आत्मा के अंदर तो वो स्वयं स्वस्थिति में है। उसके सामने किसी प्रकार की परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को सहज पार कर सकता है, निवारण ढूंढता है, क्योंकि नॉलेज है इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, समझ आती है क्योंकि नॉलेज है, आदि मध्य अंत को जानता है। अगर ज्ञान नहीं, सिर्फ वर्तमान देखता है तो पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान न होने के कारण तो परिस्थिति आती है, उसको निवारण नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का कारण कौन होता है? जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं। तो तब कहा गीता में भी, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, बहुत भावना है, श्रद्धा है, बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तब कहा सत्संग से सतगति होती है। अगर सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान नहीं है। अभी सत्संग तो बहुत प्रकार के हैं। सत्संग किसको कहेंगे? रामायण की कहानी सुनो, महाभारत सुनो, गीता सुनो, उसको भी सत्संग कहेंगे ना? कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसी को सत्संग कहेंगे। कहीं भी जाओ, सत्संग से सदगति चलेगा? बताओ। नहीं, सत्संग उसको कहते हैं। दूध कहीं भी ले लो, दूध दूध होगा ना, सफेद होगा ना, लेकिन दूध के अंदर भी एक अंदर पानी डाला हुआ है, पतला है, एक प्योर दूध है। हर चीज का मापदंड है, मेजरमेंट है। दूध तो दूध है, लेकिन देखने में इसके अंदर पानी डाला है, प्योर दूध नहीं है। तो तब का सत्संग सिर्फ संग नहीं है, सत्य चाहिए। सत्य कौन है? गॉड इज सत्य, भगवान सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम। तो स्वयं निराकार शिव, वो आके जब ज्ञान सुनाता है उसको कहते हैं ज्ञान सत्य है वो, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। तो भी आप पूछेंगे कैसे कहते हो सत्य है? हर चीज की मापदंड है, मेजरमेंट है। अगर आप किसी भी कहीं भी जाओ तो सत्य ज्ञानी है, असत्य कैसे कहेंगे आप? तो कैसे कहेंगे ये सत्य है या असत्य है? सबसे पहला, कहीं भी जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, ज्ञान सुनो, कुछ भी करो, लेकिन पहला मापदंड है ये सत्य है। कैसे कहेंगे? सत्य आत्मा है। अगर उस सत्संग में जाने के बाद आपको कहते हैं आत्मा समझ के बैठो, जैसे अभी आप आए, पहले सीधा क्लास शुरू कर सकते थे ना, प्रवचन कर सकते थे, नहीं, पहले गीत बजाया। आप अपने स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, शरीर का भान छोड़कर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो कहीं भी आप जाओ, अगर आपको कहते आत्मा समझ के बैठो तो वो सत्संग है, क्योंकि आत्मा की सदगति है, शरीर की नहीं। काले शरीर को गोरा शरीर नहीं करते, वो डॉक्टर करेगा। तो ये सत्संग किसका है? आत्मा का। अगर रूहानी सत्संग है, एक जिस्मानी सत्संग है, वहां सुनना है सिर्फ, था श्री राम, था श्री कृष्ण, थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो उनकी कहानी है। यहां ज्ञान है, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करना है। तो ज्ञान स्व परिवर्तन, तो इसके लिए कहा कि यहां सत्संग में सबसे पहला सत्य कि अगर आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठो तो उसका नाम है सत्संग है। दूसरा, वहां बैठ करके किसको याद करते हो, किसका ध्यान करते हो? श्री कृष्ण का कर रहे हो, श्री राम का कर रहे हो, कोई गुरु का कर रहे हो? सत्यम शिवम सुंदरम, एक निराकार, एक निराकार को अगर आप ध्यान लगाते हो वहां बैठकर, उसका नाम है सत्संग है। तो निराकार बाप ने कहा कि मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, शरीर की बीमारी ठीक करता हूं कभी नहीं कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। इसने पाप कटेश्वर कहा। वो ईश्वर कौन है? पतित आत्मा को। तो उसके उससे ध्यान लगाना है। याद किसको कर रहे हो, ध्यान किससे लगा रहे हो? तो वहां अगर निराकार एक सत्यम शिवम, उस निराकार के साथ ध्यान लगाते हो कहीं भी जाओ, उसका नाम है सत्संग। तीसरा है, वहां बैठकर किसका ज्ञान सुन रहे हो आप? कोई महात्मा का, रामायण का, महाभारत, गीता भी किसने सुनाई? भगवान ने जो सुनाई थी, किसने सुनी थी? कोई व्यक्ति था? किसी ने सुना? किसने लिखी? किसी व्यास ने लिखा? व्यास भगवान नहीं है, एक व्यक्ति ने लिखा। भगवान कौन? भगवान ने जो ज्ञान सुना है वो किसने सुना, किसने लिखा? प्रश्न सोचना चाहिए। तो निराकार भगवान आके जो ज्ञान सुनाता है किसको? निराकार आत्मा को। निराकार आत्मा को, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए वो ज्ञान है। डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आप बीमार समझते हो, नहीं तो नहीं जाते, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, हमको क्या करना है? भगवान आपको क्यों चाहे? खाना देगा क्या? देगा पतित आत्मा को, पाप अंदर पाप है। कैसे पता चला मेरे अंदर पाप है? पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे कहते हो? ऐसे कहते हो? अगर डॉक्टर के पास जाओ तुरंत आपको दवा दिखाता है कौन सी बीमारी है ना, तो यहां पाप आत्मा पुण्य आत्मा बता सकते हो? यहां बता सकते हो? कैसे कहेंगे ये पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है, महात्मा, ये शरीर बहुत अच्छा है, बीमारी नहीं, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर कहेगा कोई दवाई नहीं चाहिए। अगर इसको देखेंगे कि नहीं इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, ये दवाई लेना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए, बताएगा ना? तो यहां बता सकते इसको ये ज्ञान चाहिए, इसको ये ज्ञान नहीं, ये पुण्य आत्मा है, इसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान पतित आत्मा को पावन करने के लिए। अगर आप पतित नहीं हो, पाप नहीं है, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, बीमारी नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं है, है ना? फ्री भी कोई दवाई देगा, क्यों चाहिए आप? क्यों ले रहे हो आप ये ज्ञान? क्यों सुन रहे हो आप? ये आपके लिए नहीं, पतित आत्मा। तब कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी, अपना मुखड़ा देख लो। कब देखेंगे? आंखें खुली है तो सामने वाला दिखाई देता है, आंखें बंद करके सोते हो तो रात को कौन दिखाई देगा? जो अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर, आप कौन सी आत्मा हो? आपके स्वप्न बताते आपको। अगर आप में से कोई एक कहते हो आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। हर चीज का मापदंड है, ऐसे नहीं किसी ने कहने से आप पाप आत्मा या पुण्य आत्मा, ऐसे नहीं, प्रूफ चाहिए। अगर कोई कहता है आज से मिनिमम एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता, उसका नाम है कर्मातीत। आज बाबा ने कहा बाप आया है ऐसे कर्म करना सिखाता है। कैसे कर्म? जिससे आप कर्मातीत हो जाएंगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो दुनिया में जो भी कर्म सिखाते हैं उस कर्म से कर्म बंधन में आते हो। तो हर चीज का मापदंड है। अगर मेरे अंदर पाप है उसको मिटाने के लिए परमात्मा आया है। तब कहते सत्संग कहां आया है? वो जहां ये तीन प्रकार की सत्यता आपको कहीं भी मिले, उसका नाम है सत्संग। ऐसे नहीं कह सकते यहां मिलता है दूध वही अच्छा है ये खराब है, नहीं, मापदंड है, कहीं भी मिलने दो, मेजरमेंट मापदंड देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, थर्मामीटर डाल के देखेंगे इसके अंदर कितना पानी है, कितना प्योर दूध है, उस आधार से कहेंगे कहीं भी मिलता है ये प्योर है। ये प्योर ज्ञान कैसे कहते हो आप? जहां ये तीन प्रकार की सत्यता अगर कहीं भी मिलती है आपको, उसका नाम सत्संग। उससे क्या होगा? सतगति। जो ज्ञान सुनने के बाद हमारी जो बुरी गति अर्थात पाप होता था, मुख से गलत शब्द निकलता था, किसी को देखते मन में गलत विचार चलता था, किसी को देखते ही उसका देखकर हम गलत कर्म करते थे, वो करता इस तो मैंने भी किया, तो वो दुर्गति हो गए, पाप आत्मा बन गए। तो भगवान वो आके ऐसा ज्ञान देता है कि पतित आत्मा को कैसे पावन बनाना है, कैसे अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है। आज भी बाबा ने कहा कि कैसे चाहिए हमारे स्वभाव संस्कार और गुण, दूसरों से मिलनसार चाहिए। हाँ, हरेक का अधिकार है जीने का, हरेक का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान मिला हमको, इनका पार्ट अपना है, इनका पार्ट अपना है, इनका पार्ट अपना है। आप कह सकते हो इनको ऐसे ही करना चाहिए, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोलर है, जैसे आप घुमाओ वैसे चैनल चेंज हो जाएगा, ऐसे जैसे कहो वैसे चेंज होगा, किसी के पास नहीं। ये ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, समझ दिया है। हरेक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, हरेक बजा रहे है, किसी को ऐसे बैठने से अच्छा लगता है, किसी को ऐसे बैठने से अच्छा लगता है, आपको ऐसे बैठना चाहिए नहीं, उसको अपनी सुविधा के अनुसार। फिर भी डिसिप्लिन है, एक बार बताना है, लेकिन उसको जो सही लगता है उस प्रकार वो कर्म करता है, उसके अंदर जैसे संस्कार है, ये समझ में अगर आपको आता है तो आपके बोल, आपके चलन, आपके कर्मों में परिवर्तन दिखाई देता है। अगर ये न होने के कारण तो ज्ञान फूरा नहीं, तो हमारे हर सेकंड में क्या है, समस्या ही दिखाई। ये ऐसा क्यों, प्रश्न है, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये समस्या कहां से आई, हमारे अंदर इस ड्रामा का हर एक आत्मा का पार्ट का पूरा ज्ञान नहीं है। समस्या का कारण ढूंढो, किधर कारण है, कारण और किधर नहीं है। हर एक को अपना अधिकार है, अपना पार्ट है, वो करेगा अपने अनुसार। मुझे समझना चाहिए ये कैसे चलता है। राजा अलग है, प्रजा अलग है, रॉयल फैमिली वाले अलग है, प्रजा की चाल अपनी है, राजा की चाल अपनी है। तब कहा कर्म बताता है, आपकी चलन बताती है आपके अंदर कितना ज्ञान है। इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद बहुत ज्ञान सुनते हैं हम। अभी भी आप देख लो, अभी भी जो आप इधर बैठे हो, आज से कम 5-10 साल से ज्ञान में चल रहे हो। नए तो कोई नहीं, शिविर वाले तो नहीं है, एकदम 7 दिन का कोर्स करके आए हुए कोई हो नहीं है। तो आप पूछो, ज्ञान अपने 7 डेज कोर्स में ही सुना है कि ये 5 विकार काम क्रोध सुना है ना कि नहीं सुना। तो बताओ आज भी कोई भी क्रोध मुक्त है, सोच लो। तो लोग कहेंगे, कोई कहेगा ये ज्ञान ठीक नहीं है, फिर तो ये दवाई ठीक नहीं है, ये डॉक्टर दवाई देता है, बीमारी अभी तक गई नहीं है, या डॉक्टर ठीक नहीं है, दवाई ठीक नहीं। तब कहा सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, सुनने से पढ़ने से नहीं, सुनने के बाद समझ में क्या आया। तब कहा सारी मुरली आपने आज सुनी, एक भी पॉइंट याद नहीं, तो फायदा क्या है। एक ही महावाक्य, बस एक महावाक्य अगर आप बुद्धि में बैठा, वो अपने आप आपको नहीं हमें भी याद नहीं रहता है, अपने आप याद नहीं रहेगा, अपने आप अवस्था नहीं बनेंगे। हमारी अवस्था ऐसी हो वो कैसे बने, फिर उसके अनुसार अगर विघ्न आते हैं तो उसको आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। अवस्था कैसे बनेंगी, ज्ञान से। सवेरे आपने सारा 1 घंटा बैठ के ज्ञान सुना, 5-10 मिनट के बाद कोई पूछे मुरली क्या सुने थे बताओ, हाँ डायरी खोल के देखेंगे डायरी में, फिर भी वो भी पूरा नहीं। तो क्यों सुना आपने, फायदा क्या है। ज्ञान इसलिए सुना, मेरी बोल, मेरे चलन, मेरा कर्म पहले जो था, कल जो था, वो आज नहीं होना चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए। बाबा का ज्ञान सुनने के बाद बाबा ने कहा बच्चे ऐसे चलो, ऐसे करो, वो बुद्धि में चाहिए, सारा नहीं, एक शब्द। अगर वो रहता नहीं है क्या करना चाहिए, निवारण कुछ है, हर चीज का निवारण है। तब कहा अगर अवस्था बनाना चाहते हो, एक सारे मुरली से एक महावाक्य ले लो जो आपको पसंद है, यही होना चाहिए, वरदान ही होना चाहिए, स्लोगन ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। जो आपको आज लगा ये मुरली से, ये बाबा ने मेरे लिए कहा और मुझे आज ही इसका उपयोग करना चाहिए, आपकी स्व इच्छा के अनुसार मुरली सुनने के बाद एक शब्द लिखकर अपने जेब में रखो, अगर अवस्था बनाना चाहते हो तो, नहीं है तो जैसे वैसे है। अगर कुछ बनाना चाहते हो तो एक लिख कर रखो, जैसे शरीर को हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा की अवस्था भी शक्तिशाली चाहिए, नॉलेजफुल चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। तो एक महावाक्य जो सुना सवेरे, दिन में, शाम को कम से कम 3 दफा अपने आप को याद दिलाओ। एक दफा सवेरे सुन लिया आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है। दिन में 1 दफा कि आपके जेब में है, निकाल के खाना खाने बैठते ही निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा की याद, बाबा ने मुझे आज क्या होमवर्क दिया। रात को खाना आते ही याद नहीं है, जेब में है, माताएं अपने पास किचन में रखो, खाना खाने बैठते हो पढ़ो, खाना खा लो, सबसे सहज काम है। उसके लिए मुरली लेके बैठो कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लिखना नहीं जानते हो, जो कोई लिखते हैं उनको पूछ लो, रास्ते पर आते जाते नाश्ता करते हो, खाना, माता जी आप, भाई जी आप मुरली लिखते रहते हैं, आज बाबा ने क्या कहा, जेब में है। आप भी पढ़ो, औरों को भी ज्ञान, स्वयं का भी कल्याण, औरों का भी कल्याण। इसमें कोई तकलीफ है? ये अपने आप अवस्था बनने वाली नहीं। आप 10 दफा सारी मुरली पढ़ो, सारी मुरली सुनो, नहीं याद रहे। इतनी बुद्धि सतो प्रधान नहीं है, बुद्धि इतनी तमो प्रधान नहीं है। अगर गलत चीज देखते हो सुनते हो अच्छी याद रहेंगी। तब कहा स्वच्छ बर्तन में ही ये पवित्र ज्ञान ठहरता है। बुद्धि को स्वच्छ भी कैसे बनाएंगे आप? तो रोज एक बूंद भगवान के, एक बूंद के प्यासे हैं, दो भी नहीं चाहिए। एक एक बूंद इकट्ठा करो, 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट आपके संस्कार बनेंगे। तब बाबा कहते हैं ज्ञान के संस्कार बनाओ। और इतना नहीं, अपने तक नहीं, कोई भी मिला ओम शांति करके छोड़ना नहीं। अगर कोई मिला बात करो जरूर, इधर उधर के समाचार सुना के कोई फायदा नहीं। कोई मिला, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, ये उसको गुलजार दादी कहते स्वयं भी खुश रहो औरों को भी खुशी बांटो। खुशी कहां मिलती है, कहां से लाएंगे? ये किसी को मुरली के पॉइंट सुना और उसका चेहरा देख लो खुश, आपको भी लगता है मैंने भी कुछ सेवा किया, ज्ञान दान किया। ये अविनाशी ज्ञान दान है, यही हमारी सदगति करती है, यही हमारी अवस्था बनाती। नॉलेजफुल अवस्था अपने अपने बनेंगे। ज्ञान है आज का आज, ऐसे रोज करते हो 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा हो, उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा। कल इधर बाबा ने ये कहा था, 1 महीने पहले ऐसे कहा था, 10 साल पहले बाबा ने ऐसे कहा था, सब कुछ अंदर भरा। एक दफा पढ़ने से नहीं, कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाना चाहिए। कम से कम 1-2 लोगों को सवेरे से रात तक दान करना चाहिए। हो सकता है ऐसा, तब अवस्था बनेंगी। तब सिर्फ सुनने से पढ़ने से अवस्था नहीं बनेंगी। अगर ये अवस्था है, देखना महाभारत में आता है, एक बार राम पंचवटी में अकेला हो जाता है क्योंकि सीता गई, तो खर भूषण करके दोनों राक्षस आवाज करने लगे हे राम करके। तो राम को लगा कोई बुला रहा है, कुछ हो गया है। तो लक्ष्मण को कहता तुम जाओ। लक्ष्मण गया, राम अकेला होता, फिर आवाज आता है तो लक्ष्मण को कुछ हुआ, तो राम स्वयं जाता है। स्वयं जाने के बाद उसके पास जितने अस्त्र थे सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं। क्या करो, एकदम आकाशवाणी होते, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र यूज करो। वो अस्त्र छोड़ दिया, सब मूर्छित हो गए। अगर आपने ज्ञान भरा हुआ आकाशवाणी बाबा बच्चों को टचिंग देता है, हम टचिंग कैसे देंगे अगर आपके अंदर है ही नहीं? तो रोज ऐसे सुन करके ज्ञान भर के रखते, तो जमा रखते हो। देखो वहां राम को सबने आशीर्वाद दिया था, सब साधु सन्यासियों ने उसको एक एक अस्त्र दिया था, वो एक भूल गया था, सब कुछ था अंदर, वो याद दिलाता है। ऐसे ही रोज बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान रूपी अस्त्र देता है, एक एक जमा कर दो। और जब परिस्थिति आई आपके सामने, क्या करो अभी, तुरंत बाबा की टचिंग कहते हैं हम, तब आपको टचिंग, आपके अंदर टचिंग है, बुद्धि जागृत है। हाँ, उस दिन बाबा ने कहा था बच्चे ऐसी परिस्थिति में ऐसे करो, तुरंत वो संकल्प आएगा, आप उस समस्या से पार हो जाएंगे। इसको कहा बाबा की टचिंग। वो अपने आप नहीं होती है, पहले ज्ञान से भरपूर चाहिए, अंदर है, नहीं तो बाबा बता रहा है सुनाए कैसे दे रहा, हम शरीर के भान में है। परिस्थिति जब आती है तब हम आत्म अभिमानी नहीं, बाबा की याद भी नहीं आती, उधर परिस्थिति हमको घेर लेती है, वी गेट इन्फ्लुएंस, उस परिस्थिति के प्रभाव में रहते हैं। तो ऐसे समय पर भी जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे एक एक बूंद करके जब परिस्थिति आती है तुरंत याद आता है, हाँ बाबा ने उस दिन कहा था बच्चे ऐसी परिस्थिति में ऐसे करो। तब आप कहते हो बाबा ने टचिंग किया, बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया, बाबा ने बचाया, है ना। ऐसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, बाबा बच्चों को सेवा पर हर परिस्थिति में कैसे अनुभव करता है। देखो हम 2009 में अमेरिका जा रहे थे, हमारी इच्छा नहीं थी, नहीं जाना है, तो भी जा रहे थे। जाते समय देखा यहां से ट्रेन, राजधानी ट्रेन जो दिल्ली जाती कभी भी लेट नहीं होती है, और वो उस दिन सवेरे 6:30 बजे पहुंचने वाले शाम को 7:30 बजे पहुंचे और 11 बजे वीजा लेना था। तो उन्होंने कितना फोन किया, 5 बजे तक आओ, नहीं आ सकते। ट्रेनी किसने कहा, मैंने कहा बीच में उतर करके मैं टैक्सी करके जाओ। टैक्सी वालों ने कहा, बुलाया भी एक स्टेशन पर, उन्होंने कहा अगर ये ट्रेन चल जाए 1 घंटे के अंदर पहुंचेंगे आप, अगर टैक्सी करके जाएंगे कम से कम 5 घंटे चाहिए, तो भी आप 5 बजे तक नहीं पहुंच सकते हो। हमने कहा छोड़ दो, ऐसे भी अंदर से इच्छा नहीं। देखा 7:30 हो गए, 8 बज गए, छोड़ दो। लेकिन यहां जानकी दादी थी, जानकी दादी के पास प्रवीणा बहन करके थी, उसने बार बार रात को फोन किया, आप कुछ भी हो किसी का सुनना नहीं, आप सवेरे सबसे पहले आप जाना, नाश्ता भी बाद में करो। हमने कहा अमेरिका वाले वीजा ऐसे देते नहीं है, सब लोग कहते हैं अभी 1 हफ्ते के बाद फिर डेट मिलेंगी, तो नहीं आप किसी का नहीं सुनना। दादी बार बार यहां से बता रहे फोन करके, प्रवीणा बहन करके जानकी दादी के पास रहती है, उसने 2-3 दफा फोन किया, आप किसी का सुनना नहीं। गाड़ी वाला भी कहने लगा कि नहीं भाई जी इतना जल्दी सवेरे क्यों, उसने कहा 6 बजे सवेरे नाश्ते से पहले आप वहां पहले आप पहुंचना चाहिए। ठीक है देखो चलो पहुंचे, दूसरा नंबर हमारा था, दूसरा नंबर पहुंच गया तो वहां इंटरव्यू के लिए बुलाता है कि आपकी डेट तो कल थी। हमने कहा ट्रेन लेट हो गई तो आपने फोन क्यों नहीं किया, हमने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं उसको सुना रहा हूं, बाहर जो वॉचमैन है वो अंदर बता रहा है कि इसके पास मोबाइल नहीं था। हमने कहा हमारे पास उस समय मोबाइल नहीं था, 2009 में तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, कैसे मैसेज दे दूं। तो उसने कहा वो सुना था उसको, ठीक है कहने आगे जाओ। आगे गया, पहले सबसे पहले हमको बुलाया तो कहा कि आपको तो कल जाना था। हमने कहा आज टिकट अगर मिल जाए मैं आज जाने तैयार हूं, मुझे 17 तारीख को वहां पहुंचना है, तो अभी टिकट दिया, अगर वीजा अभी दिया तो जाएंगे आप। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा 4 बजे आके वीजा ले लो, ये 2 बजे बात चल रही, 4 बजे पासपोर्ट वीजा दिया और 10 बजे चला भी गया। अगर भगवान चाहता है ना, भगवान की सेवा है तो वो आपको अपने आप रास्ता, सिर्फ आपकी स्मृति चाहिए, नहीं अरे क्या होगा घबरा जाएंगे आप, अभी पहुंचेंगे नहीं, सब तैयारी किया ये हुआ, डगमग होंगे, परिस्थिति आएंगी। अगर आपकी अवस्था, हमें कोई इच्छा भी नहीं थी, हम इधर ही से बिजी है सेवा के लिए, उधर क्यों करना है, फिर भी बुलाया है जाना है, बार बार जानकी दादी कहती है पहुंचना चाहिए, सवेरे सवेरे जाओ। सब लोगों ने मुझे दिल्ली में कहा, वो कभी भी हाथ में वीजा नहीं देते, कोरियर से आएगा 1 हफ्ते के बाद, फिर भी दादी यहां से कहती है हिम्मत, कौन भगवान। जब परिस्थिति, हर कदम पर परिस्थिति आती है, नहीं ऐसे नहीं, तब इसका नाम है कलयुग। घर में भी परिस्थिति आती है, बच्चे कुछ करते हैं, पति कुछ कहता है और पड़ोसी कुछ कहता है, मार्केट में जाओ आप, बिजनेस में जाओ, कोई पैसा लेता है देता नहीं है, बहुत प्रकार की समस्या है, तब इसका नाम है कलयुग। इस परिस्थिति के अंदर अगर आपको पार होना है तो कौन चाहिए, सिर्फ ज्ञान सुनो तो चलेगा, तब का भगवान। तब बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो, कौन सा है वो हिम्मत, एक मुरली के पॉइंट आपके अंदर चाहिए और एक लक्ष्य चाहिए, इस दुनिया में मेरा कौन है, कोई आएगा, कोई मदद करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में, तब आपको कहा ऐसी परिस्थिति कुछ नहीं हो सकता है, और पहुंचता है उस दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ही, सवेरे 4 बजे को टिकट में वीजा मिल गया, 10 बजे टिकट लेकर के पहुंच भी गया अमेरिका दूसरा दिन, उसी एक दिन के अंदर। सब असंभव चीज जो है भगवान संभव करता है। तब क्या चाहिए, हिम्मत के लिए, धैर्य के लिए अवस्था चाहिए। वो अवस्था कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, उसके लिए कुछ बहुत कुछ नहीं चाहिए, रोज एक मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा करो, और जमा करने की विधि डायरी में लिखने से नहीं, आपके सुनने से नहीं, सुनने से जमा नहीं होगा, सुनने के बाद कम से कम मिनिमम 3 दफा सवेरे दिन में शाम को अपने आप को पढ़ाओ, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, कम से कम 3, ज्यादा कर सकते हो, मिनिमम बताता हूं, कम से कम सवेरे आपके मुख से 1-2-3 लोगों को मुख से आज के मुरली के पॉइंट, एक पॉइंट सुनाना चाहिए, तब संस्कार बनता है। आप कहेंगे मैंने सुना मैंने पढ़ा, आपके जेब में भी है, संस्कार नहीं बनता है, ये अच्छी तरह से जानना। अवस्था कैसी बनेगी, परिस्थिति को पार करना हरेक चाहता है, लेकिन मैं काबिल हूं, योग्य हूं, वो एबिलिटी है, तो अवस्था कैसे बनेगी? क्या करना चाहिए? 50 साल भी ज्ञान में चलो आप, कोई फायदा नहीं। यहां कैसी अवस्था बनती है? सिंपल, साधारण संसार में रहते हुए, संसार छोड़ के सब कुछ करके बैठे रहो, नहीं। संसार में सवेरे मुरली सुनी, एक शब्द जो आपको अच्छा लगा लिख करके भाई अपने जेब में रख दो, इसमें कोई तकलीफ है? किसी प्रकार की तकलीफ है तो बताओ, किसी को है? हो सकता है ये? अच्छा तो सब हैदराबाद वालों की अवस्था नंबर 1 बनेंगे, फिर तो फिर समस्या ही नहीं है। हाँ माताएं बताओ, हो सकता है ये ऐसी अवस्था बना सकते कि सुनना चाहते हो सिर्फ, क्योंकि आधा कल्प से हमारी आदत बनी है सुनने की, सुनना और वहां का वहां छोड़ के जाना। एक दिन आप प्रयोग करके देखना, अगर बहन जी मुरली लिखती है, बाहर जाते ही पूछना, बहन जी आप लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बताओ, डायरी खोल के देखती हूं। यहां से गेट के बाहर जाने के बाद भी इतनी बुद्धि तमो प्रधान है, तब बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि चाहिए। कहां से लाएंगे? वो विधि है ये। बुद्धि को भी स्वच्छ करना चाहते हो, अब उसकी और विधि चाहिए। एक विधि बताया, एक मुरली के पॉइंट। दूसरा, कोई भी आप बैठे हो यहां कि गलत विचार करना कोई चाहते हो, व्यर्थ विकल्प करना कोई भी चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता है, लेकिन आता जरूर है ना। सवेरे से रात तक आप चेकिंग करो, एक एक घंटे में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट एक बूंद तो व्यर्थ विकल्प आता है, आत्मा उसे भरी हुई है, तो उसका निवारण क्या है? ये नहीं आना चाहिए, अवस्था एकदम क्लीन रहे, उसका कोई सोल्यूशन है? अगर आप मुझे पूछते हो सोल्यूशन, मैं क्या करता हूं सवेरे से? देखो आजकल साइंस ने साधन दिया है, साधन पुरुषार्थ के लिए यूज करो। कैसे? जैसे मोबाइल दिया, मोबाइल में देखो पहले दिन ही रात को मुरली आती है, रात को डाउन क्लो कोई क्लास आता है, गुलजार दादी के देखो आजकल बहुत अच्छे टिप्स आते हैं, बाबा के अव्यक्त मुरली के क्लासेस आते हैं, अच्छे अच्छे गीत अच्छे अच्छे बाबा के हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग गीत है, वो रखो। और सवेरे स्नान करते समय आपके पास समय है, एक घंटा आधा घंटा क्या करते हो? खाली है। खाली जब होता है तब विचार चलता है, पुरानी इधर उधर की बातें चलती है, तो उस समय एक थैले में मोबाइल रखो, अच्छे कभी गीत सुनो, कभी क्लास सुनो, कभी मुरली सुनो, सुनते सुनते अगर कोई एक शब्द भी आपके बुद्धि में जाएगा, अरे इसका अर्थ क्या है, ये कैसा है? कोई क्लास है, बाबा का अव्यक्त मुरली है, कुछ ना कुछ मन को बिजी रखो। एक जब उसके बाद जब आप वॉकिंग करने जाते हो, खाली है उस समय कोई क्लास, कोई गीत, कोई मुरली सुनते जाओ। घर में माताएं खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, झाड़ू लगाते हो, समय आपके पास है, अकेले है, तो उस समय जहां अकेले हो गए, खाली हो गए, वहां व्यर्थ विकल्प आता है। कहां कहां व्यर्थ विकल्प आता है ढूंढ लो, उसका निवारण ढूंढो। और साइंस ने आजकल हमको साधन दिया है, उस साधन का उपयोग कर। जैसे भाई गाड़ी चलाते हो, खाली है ना, इधर उधर देखते रहेंगे और कुछ विचार चलता है, गीत बज रहा है, कोई अच्छा क्लास सुनो, मुरली सुनो, सुनते सुनते जाओ, मन में कुछ पड़ता रहे, मन इधर उधर न जाए, ज्ञान से बाहर न जाए। और जितना एक अगर आप 100% पुरुषार्थ करेंगे, 10% होगा। ऐसे नहीं एकदम एक घोड़े को आप बांध के रखो, इतना कट सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इतनी इच्छा भी नहीं करना, उसको कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, जो हो सकता नहीं, ये मन चंचल है हमारा, ये मन हमारा ऐसा है, ऐसा करके छोड़ना नहीं है ना। बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत करो, बाप मदद देता है। तो समझ में आया अवस्था कैसी बनती है, तब परिस्थिति किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को पार करने के लिए हिम्मत शक्ति समझ आता है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं आएंगे, ज्ञान में चल रहे हो परिस्थिति कुछ नहीं होगा, नहीं। जैसे देखो महाभारत में आता है कि इंद्र सभा में सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है दुशासन, है ना। उस समय द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, तो भी कोई किसी ने मदद नहीं किया, भगवान को याद किया और भगवान आया भी और द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन को रोका नहीं। आप कहेंगे इसको परिवर्तन करो, नहीं, ये भी हमारी परिस्थिति आती है, हम चाहते मुझे नहीं उसको ठीक करो पहले, है ना। देखो श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी को वस्त्र दिया लेकिन दुशासन को रोका नहीं, रोकना चाहता। अगर आपको कोई दुख देता है, कुछ परेशान करता है, आप क्या कहेंगे, भगवान पहले इसको ठीक करो, इसको पहले शांत करो, है ना, यही चाहते हैं ना। यही समझ में आना चाहिए, परिस्थिति आएंगी, परिस्थितियों को कुछ भी नहीं, आप अपनी अवस्था, अपनी स्मृति, मैं किसका बच्चा हूं, मुझे बाबा ने क्या कहा, बच्चे इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और जिसके मन में, दिल में दिलाराम है, दिलाराम आके नहीं बैठता है, जो बाबा ने कहा वो ज्ञान याद है। हाँ बच्चे, परिस्थिति माया पेपर ले रही है, मेरे सामने परीक्षा आई है, कुछ नहीं, बाबा अपने आप सब कुछ ठीक करेगा, कि मैं भगवान का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं मैं। ये वहां स्मृति का एक दिन का होता नहीं है, ये रोज जैसे आपके अंदर ज्ञान भरते हो, उसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये एक दिन करें, आज एक दिन करो, इधर है इतना दिन किया, वहां जाने के बाद नहीं, जीवन हमारा आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है, ये एक दिन का नहीं है। अगर सदा आदत डालते हो, इसके लिए बहुत मेहनत भी नहीं करना है, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए नहीं, एक बूंद बस, लेकिन रोज एक एक बूंद इकट्ठा करो, देखो 30 दिन के अंदर कितना कुछ पढ़ा नहीं, कोई मुरली पूरी नहीं पड़ी थी, और रोज नए नए एक एक ले लो, तो उसको आचरण में ला। नहीं तो हम सुनते बहुत कुछ है, पढ़ते बहुत कुछ है, आजकल दुनिया में टीवी में, पीस ऑफ माइंड में, मोबाइल में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए कहा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो कोई फायदा नहीं। उसमें से एक शब्द, बाबा की भी सारी मुरली पड़ी सुनी आपने, समझ में कुछ भी नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आया तब तक परिवर्तन नहीं होता है, कि क्यों, नहीं तो संसार में पति ऐसे करेगा, बच्चे ऐसे करेंगे, और कोई कैसे करेगा, ये सारी परिस्थिति कलयुग के अंत में ही हमारे पेपर लेने आएंगे, हमारे बहुत आत्माओं से हिसाब किताब है, शरीर की बीमारी होंगी नहीं, ऐसे नहीं, सब कुछ होगा, क्यों कि अंदर, अगर आप कहते तो ये क्यों, अगर आप में से कोई कहो मेरे अंदर एक महीने के अंदर 5 विकारों के एक भी स्वप्न नहीं है, उसको आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकती है। जो परिस्थितियां आ रही है हमारे सामने, कि मेरे कर्मों का अलग अलग फल है, ये अलग अलग रूप है, किसी को बिना मतलब का कोई गुस्सा करता है उसको कहते हैं दुनिया में लेग पुलिंग, आप अच्छा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो आप, कोई गलत रास्ते पर आकर के आपको टकराएगा, आपको गिराएगा, आपका फ्रैक्चर होगा। आप कहेंगे मैं सही हूं वो गलत है, क्या कर सकते हैं, लड़ाई करो, कोर्ट में जाओ, अपनी अवस्था बनाओ अच्छी, क्या करना चाहिए। देखो उसका एग्जाम्पल बाहर भी लोगों के पास है, लास्ट ईयर ज्ञान सरोवर में संत सम्मेलन था, एक स्वामीनारायण का गुरु आया था, और वो नाश्ता करने गया, नाश्ता करके आते समय तो कोई एक गाड़ी रिवर्स ले रहा था, तो रिवर्स ले लेते समय उसको धक्का लगाया, वो गिरा और उसके पांव से गया, किसी को पता नहीं, एक भाई था उसने उठाया और किसी को कहा तुरंत ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके आए, तो देखा पांव फ्रैक्चर और उसको शुगर थी, तो हमको पता चला, हमने कहा शांतिवन में इधर लेके आए ट्रॉमा सेंटर में, 15 दिन रुका, हमने कहा पूरा ठीक करके भेजना है इसको, उसको कितने दवा पूछा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ हिसाब था, हिसाब यहां था ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वो चुप हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी का नाम उसने कुछ नहीं बताया, गाड़ी आई बाद में, हमको 5-6 दिन के बाद पता चला कोई गाड़ी रिवर्स ले रहा था उसके ऊपर चढ़ाया, तब तक 5 दिन तक पता ही नहीं क्या हुआ, और उसने भी मुख से एक शब्द नहीं बोला, नहीं वो गाड़ी वाला था उसने ऐसे किया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इसलिए आया, ऐसे लोग है, एक शब्द नहीं बोला, ये कहानी नहीं, अभी भी जीवित है, ऐसे भी लोग हैं, समझते हैं परिस्थिति आती है, समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, नहीं तो हमारा एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी एक किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। अगर कोई एक बाल भी हिलाता है, कुछ भी हो रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। ये समझ में जिसको आता है वो ज्ञानी तो आत्मा है, वो तीनों कालों को जानता है। इसको बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी हो। ये परिस्थिति क्यों आई? हाँ, मैंने कुछ अलग ऐसा कर्म किया था। सिर्फ वर्तमान देखता है वो जिसको ज्ञान नहीं है, सिर्फ वर्तमान देखता है। जिसको समझ है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, अभी परिस्थिति आई, अब मुझे क्या करना है? इसके लिए इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, 10 बार इनके बोलो, कुछ होगा नहीं। क्या करना है? देखो, शास्त्र ग्रंथ द्रौपदी के सामने परिस्थिति आई, क्या किया? चिल्लाया, उनके पति भी थे, सभी इंद्र सभा है, किसी को कुछ नहीं कहा, भगवान को याद किया। ये कहानी है। आज भी हमारे जीवन में, संसार में चलते ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान में चमके 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाबा कुछ नहीं करता है। हाँ, बाबा करता है, कैसा विधि है वो विधि बताए। बच्चे अपनी अवस्था बनाओ, और अवस्था बनाने के पहाड़ पर चढ़ना, यात्रा करना, कुछ भी नहीं चाहिए। एक मुरली के पॉइंट, भगवान के एक बूंद अपने पास रखो। दूसरा कि परिस्थिति आई तो वहां अगर आपको रोज ही याद है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। क्यों? अमृत वेले जब योग करते हो, मुझे एक बात बताना था आपको भी, एक याद रखो। देखते हैं आप किसके लिए आए हो यहां, तपस्या करने आए हो। चार धाम की यात्रा करने के लिए बहन जी ने बताया, कब करना चाहिए? शाम को, अमृत वेले नहीं। कई कई माताओं का, बहनों का भी समझ में नहीं आता है, भाषा भी। 4 बजे सब चारों जगह पर जाके दो दो मिनट बैठेंगे, उठेंगे, 2 मिनट बैठे, उठ गए, दूसरों को डिस्टर्ब होता। आपका सभी का स्थान यहां है, क्योंकि छोटे हिस्ट्री हॉल में जमीन पर बैठना पड़ता है, बैठ नहीं सकते हैं, शरीर भारी होता है, 2 मिनट बैठेंगे पाव दर्द करेगा, तो नहीं बैठो। किस क्यों बैठो? जिसको करना है, जो मधुबन निवासी है, दादिया है, वो हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, आपके लिए नहीं, आपके स्थान है। फिर भी आप बैठना चाहते हो, शांति स्तंभ में खुर्ची है, वहां जमीन पर बैठना पड़ता है, और कहीं किसी भी दरवाजे से घुसते हो नहीं। एक दफा अगर ये योग में बैठा, आप आगे से जा रहे हो, उठ रहे हो, तो उसको डिस्टर्ब होता है ना। तब बाबा कहते अगर आपको योग में बैठे थोड़ा नींद भी आ रही है, आपके वाइब्रेशन भी वातावरण को खराब करता है। अगर आप अच्छे तरह से बैठे हो तो भी आपके मन में गलत विचार चलता है, ये भी महापाप है कि आप अच्छे वातावरण को खराब कर रहे हो, है ना। तो सूक्ष्म रूप में मैं स्थूल रूप में बताता हूं, ये ध्यान दे दो कि कभी भी आपका स्थान यहां है। हरेक आओ, समय पर बैठो, लेट आते हो पीछे बैठना, समय पर 4 बजे गीत बजता है, 3:30 बजे गीत बजता है, 3:30, ये भी नियम है, मर्यादा है। 3:30 बजे उठो, मुंह धो लो, चाय पी लो, जो कुछ करना है, 4 बजे गीत कंप्लीट होने से पहले आके बैठना चाहिए। किसी कारण लेट आए, पीछे बैठो। किसी को बैठ नहीं सकते, उठना चाहते हो, हाँ पीछे बैठो, जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब में बीच में जाएंगे। ऐसे हिस्ट्री हॉल मधुबन निवासियों के लिए, हर एक का जगह है। तो अगर वहां बैठना चाहते हो, 4 बजे का गीत बजने से पहले पहुंच जाओ, गीत बजाए, उठना है, पूरा 45 मिनट्स बैठना है। बीच में उठ के गए, आए तो उधर जाओ नहीं, आप बैठ नहीं सकते, जमीन पर बैठना पड़ता, सोफा थोड़े से है, सबके लिए जगह नहीं होती है, हर एक की अपनी अपनी अवस्था है। तो अवस्था पूर्व ऐसे रखते हो तो व्यवस्था भी ऐसी अच्छी होती है, किसी को तकलीफ नहीं है, इसका ध्यान दे दो। किसी को कुछ होता है, शांति स्तंभ पर भी है, कुर्सी रखी है, बहुत बड़ा जगह है, वहां बैठो, आराम से हवा में बैठना है, तो इसका भी ध्यान देना। तो तब कहा अगर आप आधा घंटा, ये तपस्या है, अमृत वेले बैठते हो, उसकी भी विधि चाहिए कि शक्ति चाहिए। अभी आपको पता है खाना नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है, लेकिन आदत बनी है खाना चाहिए, खाना लेते हो, खा नहीं सकते हैं, फिर वेस्ट करते हो, दाना दान किया हुआ है, एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आपको जो समय मिला 2-3 दिन सवेरे आधा घंटा अच्छी तरह से तपस्या चाहिए। कोई भी गुस्सा करना नहीं चाहता है, गलत बोलना कोई चाहते है, लेकिन निकलता है घर में, बच्चे पति और कोई कुछ करता है गलत, तो मुख से गलत निकलता है। अरे ज्ञानी आत्मा, अशांति घर में कोई मानेगा ज्ञानी? तो इसलिए कहा पावर चाहिए, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, ज्ञान सब कुछ नहीं, शक्ति भी चाहिए। तो इसलिए अमृत वेले जब बैठते हो, कहीं भी बैठो आराम से, इतना बाबा ने सहज तरीका बताया, तपस्या सवेरे शाम को तपस्या करते हैं, सारा दिन चलते फिरते याद करते हैं, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, इनको देखते क्या याद आया, हाँ बाबा ने कहा इनके प्रति शुभ भावना, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति, याद कर्म करते करते याद आना चाहिए, आज बाबा ने मुझे क्या कहा, ये कहा था, ये होमवर्क दिया था, ये याद, ये 8 घंटा कर सकते हो। अमृत वेले शाम को जब बैठते हो आधा घंटा, 6:30 से 7:30, सवेरे 4 से 5:45 बजे तक आधा घंटा कम से कम भी बैठो, बैठते ही विधि है अपने आत्मा समझ बाबा को याद करो का। अब ये भाई तो मुझे दिखाई देता है, फिर भी मुझे पता नहीं कौन है, इसको मैं कैसे समझू, इसको पूछेगा ना, भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, अब मैं इस भाई को समझा, आत्मा हो ये पता है, लेकिन कौन सी आत्मा हो, पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, कौन सी आत्मा हो, तो उसका परिचय चाहिए। 5 मिनट आत्मा का चिंतन चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो विधि बताता, और परमात्मा का चिंतन, आत्मा समझ बाबा से बात करना, ये इतना सहज शब्द है लेकिन इतना कठिन है, जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा योग सबसे कठिन लगता है, मेहनत है इसके अंदर, ऊंची मंजिल है, सहज विधि है, आराम से बैठो जैसे चाहे, सोफा पर पाव खोल के बैठो, ऐसे नहीं ऐसे ही बैठना चाहिए, जैसे चाहे बैठो, बैठ करके अपने आप से बात करो, पहले मैं कौन, मैं बुद्धि जवाब देती है, 2 चीज है भारत में, 1 हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ, तो मन और बुद्धि को जोड़ दो, आत्मा का रूहानी नमस्ते, ये शरीर के लिए 2 हाथ है, आत्मा का भी 2 हाथ है, मन पूछता है मैं कौन, ये रोज करना बैठते ही, कोई भी देखना, नींद नहीं आएंगी, व्यर्थ विचार, विकल्प, माया, रावण, कुछ नहीं आएगा, ये दरवाजा खुला है इसलिए आता है, तो बुद्धि का दरवाजा खुला है, हम योग में बैठे मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बाबा आप प्यार के सागर, मन चल रहा है, बुद्धि खाली है, तो उसको और कोई कोई याद आता है, तब माया आई, तो योग करने की विधि है, तो बैठते ही अपने आप से पूछो मैं कौन, ठहरना, बुद्धि से आवाज आता है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती, जैसे आसमान में सितारा चमकता है ऐसे सफेद चमकता हुआ चित्त प्रकृति के बीच में बैठा, ऐसे बैठा हो दिखाई देगा, हाँ इधर नहीं अंदर है, दिखाई देना चाहिए, कभी देखा शांतिवन में गुलजारदा के तन में बाबा आता है, आपने कभी देखा चमकता हुआ सितारा, किरणें निकलती है, टीवी में दिखाने की, हाथी के दिखाने के दांत अलग है, खाने वाले दांत अलग है, यहां भी दिखाने वाली चीज अलग है, ये करने की चीज है, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं, बुद्धि महसूस करती अंदर है, फिर मेरे गुण 7 गुण है, एक एक गुण याद दिलाओ, हाँ मैं संपूर्ण पवित्र था आज नहीं, जब शुरू में परमधाम से उतरा तब मैं संपूर्ण पवित्र था, अब मुझे ऐसे बन के वापस जाना है, जब मैं आया तो मैं शांत स्वरूप हूं, अभी शांत स्वरूप हो, अभी भी गुस्सा आता है, तो शांत स्वरूप कब थे, हाँ वो याद चाहिए, मैं जब शुरू में आया तब शांत स्वरूप था, अब मुझे पुरुषार्थ कर ऐसे बनना है, एक एक गुण अपने आप को पढ़ाओ। 4. मेरे कर्म, ये आंखों से मैं इधर उधर देखता हूं, अभी योग में बैठे इधर उधर नहीं देखना है, तब कहा डिटैच, अशरीरी बनो, शरीर का उपयोग नहीं, हाथ हिलाओ, पाव हिलाओ, इधर देखो नहीं, शरीर का यूज नहीं करो, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग इस प्रकृति में बैठा हूं, तब कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, डिटैच हो जाओ, बोलने से नहीं करना है, ठीक है, तो शरीर का जो बैठे, कोई गया इधर देखा, कोई आया इधर देखा, नहीं, बिल्कुल एक जगह स्थिर बैठो। 5. मैं कहां से आया, परमधाम से, परमधाम में बाबा को क्या याद करेंगे, बाबा मेरे पति को सद्बुद्धि दे दो, मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ, ऐसा नहीं, क्या क्या करेंगे बताओ छोटी दीदी, बाबा को क्या याद करेंगे आप, आप कहेंगे तो आपका पिताजी कौन है, आप कहेंगे मेरे पिताजी के पास इतनी जमीन है, इतना पैसा है, ऐसे बताएंगे ना, तो अभी शिव बाबा के पास क्या है, सर्व शक्ति है, कौन सी शक्ति है, 8 मुख्य शक्ति है, शिव ने शक्ति को शक्ति दिया, इसलिए दुर्गा को 8 शक्ति दिखाते हैं, मुख्य 1 शिव बाबा पवित्रता का सागर, बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे मेरे से मांगो, नहीं, बाप समान बनो, हमारा बाप कैसा है, वो पवित्रता का सागर है, मैं कैसा हूं कंपेयर करो, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा आप सबको सुख देते हो, सुख दाता हो, दुख हरता हो, मैं क्या कर रहा हूं? कंपेयर करो, बाप कैसा बेटा कैसा, मुझे बाप समान बनना है। मेरा बाप क्या करता, रोज आके मुरली सुनाता है, मैं क्या करता हूं? पूछ लो, क्या करते हो? मुरली सुनाते हो, मुरली के पॉइंट एक बूंद तो दे दो। एक एक शक्ति लेके बात करो, कंपेयर करो। 8 मिनट अगर मन बुद्धि वहां है, जैसे 5 मिनट आप धूप में बैठो, देखो पसीना निकलता है, तो ये सर्वशक्तिवान आत्मा का पसीना निकालता है। तब कहते पतित आत्मा को पावन करता है। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे 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 मिटते जाएंगे। विधि चाहिए, नहीं तो 1 घंटा कागज धूप में रखा है नहीं जलता है, 1 ही मिनट में जला सकते हो, विधि है। यहां भी आप कहेंगे इतने साल दो दो चार चार घंटे बैठते हो, नहीं, 2 ही मिनट बस, विधि पूर्वक बैठते ही। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस। अपने को जागृत करो हर सेकंड, मैं माना शरीर। तो यहां जब बैठते हो, कम से कम बैठते ही अमृत वेले और शाम को, 2 टाइमिंग बैठते अपने को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं क्या कर्म करता हूं? शरीर को चलाता हूं, अभी शरीर को चलाना नहीं। कहां से आया मैं? परम धाम से आया। कौन है परम धाम? देखो हमारा बाप कैसा है, कंपेयर करो हमारा बाप, बाबा ने कहा बाप से बात करो, कैसा है वो? पवित्रता का सागर। मैं कैसा? बाप समान बनो। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुखहरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, समय से करो, समय संकल्प श्वास ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भाग्य बनेगा, अपने आप भाग्य नहीं बनेगा, विधि बताता है। और दिव्य बुद्धि दाता है, बुद्धि को दिव्य करने की विधि बताता है। जो आपको बताया एक एक मुरली पॉइंट रोज अंदर धारण करते हो, जमा करते हो, बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, अपने आप याद आएगा कल बाबा ने ये कहा था, परसों ये कहा था, अंदर चिंतन चलेगा, अंदर जमा करो। ये अगर रोज विधि पूर्वक बैठते ही, यहां से सीधा परम धाम है ना, उसको कहते हैं लाइन क्लियर, तो आवाज क्लियर रहता है, लाइन नहीं तो दूसरा गुस्सा है, कनेक्शन क्लियर। 8 शक्तियां, एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करते रहो, इधर उधर की बातें नहीं। हाँ, बाबा के कमरे में बैठो, सूक्ष्मतम में बैठो, तो रूरियान करो, बाबा ये बीमारी है क्या करो, बाबा ये समस्या है क्या करो, वो सूक्ष्मतम में रूरियान करो। बाबा के कमरे में बैठते हो, रूरियान करो। यहां तपस्या है, निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप को याद कर रहे हैं। कोई तकलीफ है? समझ में आया कि बैठते नींद आने का कारण काम नहीं करे, खाली बैठेंगे तो नींद आएंगे ना कि नहीं आएगा, है ना? खाली नहीं, मन और बुद्धि, ये दो चीजें, दोनों फैन चलना चाहिए, ठीक है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या करने आए हो, नहीं तो आप मुरली रोज सुनते हो, क्लास भी सुनते हो, सब कुछ करते हो, क्यों आए? तो ज्ञान सुनकर विधि पूर्वक बैठकर तपस्या करो। सारे कल्प के अंदर ये एक ही समय है भगवान से सर्वशक्तियां प्राप्त करने का, फिर दोबारा नहीं मिलेगा एक कल्प के बाद। इस समय को ऐसे गंवाना नहीं। और अमृत वेले खास, बाबा ने कहा अमृत वेले बच्चों को मैं सकाश देता हूं, बच्चों की पालना करता, तब भगवान आया है। सूक्ष्म तन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर बच्चों को देखता है, पालना करता है। हैदराबाद से सब आके क्या कर रहे, मधु बनाने के बाद नींद कर रहे हो सवेरे, हाँ कि अलर्ट हो गए, करने आए कुछ के लिए, पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हैं, कोई लाइब्रेरी में गया, कोई खेलने गया, तो क्या होगा? पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, मंजूर कर सकते हो कि थक जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ सुनते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, बहुत सुनते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा का सहज ज्ञान है आत्मा समझ मुझे याद करो, ज्ञान अपने बुद्धि में, ज्ञान दिलाराम को दिल में रखो, बुद्धि में दिलाराम ने जो ज्ञान सुना है श्रीमत, वो याद होना चाहिए। 1 पॉइंट, 2 भी नहीं, इतना सिंपल है। कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कितना भी कोई लेग पुलिंग करता है, कोई भी आगे जाने को गिराना चाहता है, कुछ करता है, बहुत कुछ होता है, हिसाब किताब है, ये वो सब कुछ करेगा, लेकिन आपके साथ कौन है? तब कहा कितनी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को पार कर सकते हैं। समझ में आया? अवस्था पहले बनाओ, अवस्था के बगैर परिस्थिति पार नहीं होंगे। परिस्थिति में हार होगा, परेशानी होगी, जो अवस्था नहीं है। और अवस्था और कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। ओम शांति।
शांति। सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब को बहुत बहुत थैंक्स देना।
राजा आता है तो ताली दिखाना पड़ता है ना।
नहीं,
हमारे
नहीं,
तो पहले
ऐसा
स्वागत
नहीं
किया।
आप हम राजा है तो आप बहुत बड़े महाराजा हैं। महाराजा के लिए कर लो एक बार जोर से ताली भी बजा लो।
हैदराबाद का नवाब पॉपुलर है ना, हैदराबाद का राजा है।
तो सभी बहुत खुश हो गए क्लास सुन के, क्योंकि बाबा हमारी अवस्था ही तो चाहता है ना। लेकिन अवस्था कैसे पक्का बनना, कोई भी समस्या में अचल रहने के लिए बहुत अच्छी विधि है। और हमेशा रामनाथ भाई का क्लास इतना इंटरेस्टेड रहता है, एकदम बुद्धि में मन बुद्धि को जोड़ के नमस्ते करना है रोज बाबा से। थैंक यू। ओम शांति।